समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
प्यार और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। और कहने को बहुत ही छोटी लेकिन बहुत गहरी बात कही मुकेश ने, स्पेशली इन टुडेज़ टाइम्स वेयर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट वी ऑल आर रेडी टू यू नो टू आर्ग्यू विद ईच अदर एंड, लेकिन अगर हम लोग अंडरलाएंगे कि ये चीज रखें, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, इवन इफ यू डोंट एक्सेप्ट द अदर पर्सन व्यूज यू कैन ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, इजंट इट मुकेश?
बिल्कुल।
सो आई थिंक दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी शुड थिंक अपॉन, ब्रूड अपॉन and start our day so that sirf dusron ki nahi khaastaur se hamari apni zindagi kafi smooth hona chahiye. On that note, let's start today's show where we bring you an amalgamation of news stories and apart from that in our metro news section janenge aapke apne shehar ka kya hal hai, kya khabrein aa rahi hain wahan se in our metro news section, and of course the last section in which we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today. So let's start with the headlines.
जी हाँ।
Prime Minister Narendra Modi will attend the All India Conference of Directors General and Inspectors General of Police in Bhubaneswar, Odisha today and tomorrow. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 3-day conference yesterday. The conference is being held to provide an interactive platform for senior police professionals and security administrators in the country to discuss and debate diverse national security related issues. The meeting focuses on critical components of national security, including counter-terrorism, left-wing extremism, coastal security, new criminal laws and narcotics, among others. The President's Police Medal for Distinguished Service will also be awarded during the conference. Prime Minister Modi reached Bhubaneswar last evening on a 3-day visit to Odisha.
भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामलों को लगातार दृढ़ता से उठाया है। श्री जायसवाल ने चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी के बारे में कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं, भारत को आशा है ये प्रक्रियाएं न्यायसंगत, निष्पक्ष और पारदर्शी होंगी। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों को गंभीरता से लिया है। लोकसभा में कल उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में इस वर्ष अगस्त में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया तथा मंदिरों सहित अन्य पूजा स्थलों पर भी हमले हुए हैं।
The India Meteorological Department IMD has said that the cyclonic storm Finjal over southwest Bay of Bengal moved northwestwards. The IMD added that it is likely to move northwestwards and cross North Tamil Nadu and Puducherry coast by afternoon. The weather agency has forecast heavy to very heavy rainfall with extremely heavy falls over North Tamil Nadu, Rayalaseema, south coastal Andhra Pradesh and Yanam today. IMD also predicted heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, south interior Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. The Met Department has also forecast dense fog conditions during late night and early morning hours in Uttar Pradesh till Monday. Further, IMD has predicted smog and shallow to moderate fog in the morning hours and smog and mist in the evening hours over the next 2 days in Delhi NCR.
केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने कहा है कि वस्त्र उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में कल उन्होंने बताया कि सरकार की समर्थ योजना से 3,60,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। ये पहल कपड़ा उद्योग में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। श्री मार्गेटा ने बताया कि इस योजना में 88% महिलाएं लाभार्थी हैं। कपड़ा क्षेत्र जो है वो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जो इस समय 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है।
यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विल बी ऑन अ डे लॉन्ग विजिट टू गुजरात टुडे। द मिनिस्टर विल विजिट द बुलेट ट्रेन ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट केम इन सूरत। मिस्टर वैष्णव विल ऑल्सो विजिट प्लासर इंटर फैक्ट्री इन वडोदरा। Later in the day, the minister is scheduled to attend the second convocation of Gati Shakti Vishwavidyalaya in Vadodara. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will also be present on the occasion. Our correspondent reports that a total of 239 students from various streams will be awarded degrees during the convocation ceremony.
सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। लोकसभा में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला वैश्विक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के उद्घाटन समारोह में कल श्री शेखावत ने कहा कि मेला संस्कृति, कला और शिल्प के वैश्विक आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है। सरकार दुनिया भर के आगंतुकों के लिए सर्वोत्तम आवास, परिवहन और पर्यटन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तथा सिक्किम की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। नई दिल्ली में कल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह आयोजन पूर्वोत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक सेतु बनेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
Thirukkural will soon be published in trilingual edition in 10 new languages including Maori, Scottish and Albanian. The Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation is planning to publish the trilingual books in Tamil, English and a third language next year. Joint Director of Translations T. Shankara Saravanan said that it has been planned to provide the translation of Thomas Hitoshi Pariksama's Thirukkural to publishers interested in publishing Thirukkural in their own languages. He said that grants will be given to languages even if it is spoken by less than 5 lakh people. Another proposal is also to identify publishers and translators for translation of Silapadikaram and Manimekkalai at the Chennai International Book Fair 2025. He said that the book fair has attracted 225 applications from authors, translators and literary agents in 80 countries. Moving on to Bengaluru, Arunachal Pradesh Minister for Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Veterinary, Dairy and Fisheries, Gabriel Denwag Wangsu, visited the Indian Institute of Horticulture near Bengaluru with a delegation yesterday. They visited the research center and were briefed on the activities. They were taken to Fruit Crops Nursery Unit, Food Safety Lab, Phytosanitary Certification Unit, the Mushroom Unit, Seed Unit and other facilities. The director of the institute, Dr. T.K. Behera, and senior agri-scientist of the institute briefed the delegates on research activities, educational programs and extension activities. The delegates expressed interest in setting up a tissue culture unit in Arunachal Pradesh. They also sought assistance in capacity building, technology transfer, seed supply, value addition, marketing and demonstration of advanced farming techniques. Another story from Bengaluru. We are moving on to Hyderabad now. The Telangana state government has decided to withdraw the Lagacharala land acquisition notification. The government issued orders yesterday withdrawing the notification for acquiring 632 acres from 580 farmers to establish farmer village in the Lagacharala village of Vikarabad district. Lagacharala witnessed violence when the Vikarabad collector Pratik Jain went to the village a few days ago to conduct a public hearing in connection with acquiring land for the farmer village. Farmers had been opposing land acquisition for the farmer village in Lagacharla and 5 other villages. The police filed cases against several villagers, including former Kodangal MLA P. Narendra Reddy, and arrested them. So this was the buzz that I had from these 3 cities. Mukesh, what is the buzz that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के समाचारों की। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कई कदम उठाए हैं। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने बताया कि मुंबई में प्रदूषण रोकने के लिए महानगर पालिका ने 29 तरह के नियमों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सड़कों पर धूल कम करने के लिए एंटी स्मॉग मशीन लगाई जा रही है। प्रत्येक निर्माण स्थल पर एक अलग वायु गुणवत्ता सूचकांक मापने की प्रणाली स्थापित की जाएगी। मालाबार हिल में शहर के पहले एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे का जनवरी 2025 में उद्घाटन किया जाएगा। ये वॉकवे 470 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा है। ये गिरगांव चौपाटी में शानदार दृश्य प्रस्तुत करेगा। और मुंबई के पार्किंग संकट के निपटान के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 504 करोड़ रुपए की परियोजना एक मल्टी लेवल रोबोटिक पार्किंग टॉवर की योजना बनाई है। नागरिक अधिकारियों के अनुसार ये एमआरटी वर्ली में बीएमसी इंजीनियरिंग हब में आएंगे। और बात करते हैं कोलकाता के समाचारों की, तो पश्चिम बंगाल सरकार 15 वर्ष पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश से सहमत नहीं है। परिवहन मंत्री स्नाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि जब अधिकरण ने आदेश दिया था उस समय BS2 गाड़ियां सड़कों पर थीं, लेकिन अब BS6 गाड़ियां सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि जब मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी तब राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। और बात करते हैं दिल्ली के समाचारों की, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। व्याख्यान का विषय वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती भूमिका था। श्री हरिवंश ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलते हुए भारत आज दुनिया भर में एक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में है। उपसभापति ने देश के विकास में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए भारत अब दुनिया की चुनौतियों से निपटने में नेतृत्व कर रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज बन गई है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी उपस्थित थीं। यह व्याख्यान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर हर वर्ष 3 दिसम्बर को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट विधानसभा के मौजूदा सत्र में रखने के लिए पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि ये रिपोर्ट कई सालों से लंबित है और इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से कई बार अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर वायु प्रदूषण सहित अन्य जनहित मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कल दिल्ली विधानसभा से वॉकआउट किया। विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।
और अब जान लेते हैं क्या हाल है मौसम का मुकेश, तो पहले बता देते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन डाउन साउथ विच इज फार बेटर देन द नॉर्थ बिकॉज ऑल ऑफ अस इन द कैपिटल एटलीस्ट आर स्ट्रगलिंग विद एयर पोल्यूशन, बट उसकी बात आप कीजिएगा। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट्स द वेदर कंडीशन इन चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। वेल, चेन्नई विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे एंड सम हैवी रेन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। The temperature will hover between 21 and 26 degrees Celsius. In Bengaluru, there will be a cloudy sky as well, with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature was 18 degrees Celsius. Maximum will be around 26 degrees Celsius. Hyderabad will have a partly cloudy sky with haze, and temperature in Hyderabad will hover between 18 and 30 degrees Celsius.
जी हां, दिल्ली की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और राष्ट्रीय राजधानी वायु गुणवत्ता अभी खराब बनी हुई है। कल औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 329 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ इलाकों में ये 400 से अधिक भी था और आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई में सवेरे कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Right, and now it's time for some sports news.
जी हाँ मुकेश, आज खेल खबरों की शुरुआत बैडमिंटन से। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, पीवी सिंधु और उन्नति हुडा अपने अपने वर्ग के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा ने अंतिम चार में प्रवेश कर लिया। पुरुष डबल्स में ईशान भटनागर और शंकर प्रसाद अंतिम तथा साई प्रतीक और पृथ्वी रॉय ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्ट्रो ने भी अंतिम चार में प्रवेश किया। वहीं दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व मोहम्मद अमान कर रहे हैं। ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में आज संयुक्त अरब अमीरात का सामना जापान से होगा। ये मैच भी सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और जापान शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल भाग ले रहे हैं। उधर अगले वर्ष होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से जुड़े मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक कल हुई। सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं जाने के भारत के निर्णय का आईसीसी बोर्ड के सदस्यों ने समर्थन किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत खेलने की सलाह दी थी। इस मॉडल के अनुसार भारतीय टीम प्रतियोगिता के सभी मैच किसी तीसरे देश में खेले जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट के आयोजन का विरोध किया है। आईसीसी बोर्ड के सदस्य इस मुद्दे पर विचार के लिए आज फिर बैठक करेंगे। 50 ओवर के इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले वर्ष फरवरी मार्च में होना है। इस बीच बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नई दिल्ली में श्री शुक्ला ने कहा कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई भारत सरकार के आदेश के अनुसार काम करेगा। और आज खेल खबरों में बस इतना ही।
और अब समय हो चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बन गई। आज 30 नवंबर है।
Yes, and let's take back our listeners to the year 1609. Well, Galileo first began observing the moon with his telescope on 30th of November 1609. He discovered that the surface of the moon is not smooth as previously thought, but full of mountains and valleys like Earth. Galileo was not the first or the only astronomer to use a telescope to study the moon, but he was the first to publish a detailed report of his findings. On this day in 1782, Britain and the United States signed the preliminary peace articles of the Treaty of Paris in Paris, France. The treaty was formalized in the year 1783 and ended the American War of Independence. Also in 1876, archaeologist Heinrich Schliemann discovered the gold mask of Agamemnon at in Greece, which was known as the Mona Lisa of prehistory. Also on this day in 1950, President Truman announced during a press conference that he is prepared to authorize the use of atomic weapons in order to achieve peace in Korea. What a paradox that in order to achieve peace, we have to use weapons. Anyway,
बिल्कुल.
What is the next event?
जी हाँ, 1965 की बात करें तो आज ही के दिन दिल्ली में डॉल्स म्यूजियम यानी गुड़ियों के संग्रहालय की स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी।
And I think those of us who have visited the Dolls Museum, now it has been renovated also. I think social media से अलग हटके अपने घर के बच्चों को इस तरह की जगह जरूर ले जाना चाहिए, especially in the National Capital, there's a real museum, there's a Dolls Museum.
जी.
And in fact, when I went to the Dolls Museum, Mukesh, for the first time, I was amazed to see that how many dolls from so many countries.
दुनिया भर की जो गुड़िया हैं वहां पर देखने को मिलती हैं और बड़ा ही आश्चर्य भी होता है कि इतनी सारी गुड़िया कैसे इकट्ठी की होंगी।
That's right. Right, and some of them, जिनको हम लोग बोलते तो dolls हैं, but they are masterpieces in terms of how they have been created, because of the kind of the artistry that went into it. Okay, then moving on to the year 1966, the Caribbean island of Barbados gained independence from Britain. 55 years later, in 2021, it became a republic. Also on this day in 1974, Elton John's Greatest Hits began a 10-week run atop the Billboard 200 Pop Album chart, on its way to selling more than 24 million copies worldwide. And on this day in 1982, King of Pop Michael Jackson's sixth solo studio album, Thriller, was released worldwide, and it eventually became the best-selling record album in history. Also in the same year, the film Gandhi by Richard Attenborough was first having its world premiere.
1997 की बात करें तो आज ही के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति हुई थी। 1999 में आज ही के दिन सिएटल में विश्व व्यापार संगठन का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ और विश्व के बड़े मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का पुणे के समीप नारायण गांव में आज ही के दिन उद्घाटन किया गया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड चुनी गई थीं। 2004 में आज ही के दिन बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 45% सीट वाला विधेयक पारित हुआ और 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण के गठन की योजना की थी.
And now when we remember some of the personalities who have left their indelible marks on the sands of time, on our list we have a very accomplished English poet, and in fact his origin was Irish, and we are talking about Oscar Wilde. And after writing in different forms throughout the 1880s, he became one of the most popular playwrights in London in the early 1890s. He is best remembered for his epigrams and plays. His novel, The Picture of Dorian Gray, and his criminal conviction for gross indecency, he was involved in it. And Wilde's parents were Anglo-Irish intellectuals in Dublin. Wilde tried his hand at various literary activities. He wrote a play, published a book of poems, lectured in the US and Canada on the English Renaissance in art and interior decoration, and then returned to London where he lectured on his American travels and wrote reviews for various periodicals. Known for his biting wit, flamboyant dress and glittering conversational skill, Wilde became one of the best known personalities of his day. At the turn of the 1890s, he refined his ideas about the supremacy of art in a series of dialogues and essays, and incorporated themes of decadence, duplicity and beauty into what would be his only novel, The Picture of Dorian Gray. He returned to drama, writing Salome in 1891 in French, but it was refused a license for England due to an absolute prohibition on the portrayal of biblical subjects on the English stage.
और आज ही पुण्यतिथि है देशभक्त पझस्सी राजा की. आज ही के दिन 1805 में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे. वो 1774 और 1805 के बीच केरल के मालाबार क्षेत्र में कोट्टायम राज्य के वो वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई लड़ी थी. वो अपने वीरता के कारनामों के कारण केरल सिंघम के रूप में लोकप्रिय हैं. 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोट्टायम क्षेत्र का नियंत्रण हासिल कर लिया और पझस्सी राजा के सिंहासन के दावे को दरकिनार करते हुए उनके चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त किया. वीरा वर्मा ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए. हमेशा से कंपनी के शासन के विरोधी रहे पझस्सी राजा ने 1793 में इस आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान जन प्रतिरोध का नेतृत्व किया और 1796 में कंपनी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया जिससे 1797 में अंग्रेजों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा.
Today we are also remembering Pandit Vijay Raghav Rao on his death anniversary. An Indian flautist, composer, choreographer, musicologist, poet and fiction writer, he was awarded the Padma Shri by Government of India in 1970 and in 1982 the Sangeet Natak Academy in Creative and Experimental Music category, which is the highest for performing artists conferred by the Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama.
और अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक रमेश चंद्र दत्त की आज पुण्यतिथि है. वे धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक और महान शिक्षा शास्त्री थे. 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी. इनकी रचनाओं में ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, विक्टोरिया युग में भारत और प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास शामिल हैं. ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में रमेश चंद्र दत्त को विशेष ख्याति प्राप्त है.
Today we are also remembering Indu Bala Devi on her death anniversary. She received the Sangeet Natak Academy Award in the year 1975 and is considered one of the greatest Bengali female singers. She made her first of hundreds of recordings for Gramophone Records in 1915. She performed on stage with her mother's company, the Rambhagan Female Kali Theatre, and at the Star Theatre. She also sang on All India Radio beginning in 1927, on the broadcaster's second day on air, and regularly through the 1930s. In 1936, she was appointed court musician to the Maharaja of Mysore.
और पर आधुनिक तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि घर जाड़ा अप्पाराव की आज पुण्यतिथि है। अप्पाराव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में विद्वान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता वेंकट रामदास संस्कृत और तेलुगु के विद्वान और वेदांत तथा ज्योतिषी के ज्ञाता थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और विद्यालय में संस्कृत और दर्शन उनके प्रिय विषय थे।
Today we are also remembering Kuldeep Manak on his death anniversary, a singer best known for singing a rare genre of Punjabi music called Kaliyan, and his real name was Latif Muhammad Khan. He is generally regarded as one of the greatest Punjabi artists of all time. His high-pitched, strong voice was unique and instantly recognizable, and a statue of Manak has been erected in Ludhiana near his residence as a tribute. We have a song.
ਕਣਕਾਂ ਮਾਏ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਅੰਬੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਫਾਂਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਥੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਸਿਜਕਾ ਨਾਲ।
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद और पादप क्रिया वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को, आज उनकी जयंती है। जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य अपवर्तन विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग आरंभ किए थे, और उनको लघु तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग तथा श्वेत और पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गेलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। और मार्कोनी के प्रदर्शन से दो वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था, और इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट किया था।
We are also remembering V.N. Janki, also known as Janki Ramachandran, today on her birth anniversary. And she was an actress and who also served as the Chief Minister of Tamil Nadu for only 23 days after the death of her husband, M.G. Ramachandran. And she was also the first actress to become the Chief Minister in the history of India. And Janki's early films were Manamata Vijayam, Savitri and Chandralekha brought her a lot of popularity.
ओ काजू ना क्या किया मैं बानू नन्ना का मेरा दिया ओ काजू ना क्या किया।
और प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका वाणी जयराम की आज जयंती है। उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। वो अक्सर 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक के अंत तक भारत भर में कई संगीतकारों की पसंद रही हैं, और हिंदी के अलावा वाणी जयराम ने कई भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ओडिया, गुजराती और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए हैं। तो क्यों ना उनका गाना सुना जाए। उन्होंने तीन बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। वर्ष 2012 में उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत में उनकी उपलब्धियों के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ से सम्मानित किया गया।
Today we are also remembering Deepa Sahi, an actress and producer best known for her role as Maya in the 1993 movie Maya Memsaab, opposite actor Farooq Sheikh. She also made her directorial debut with the movie Tere Mere Phere in 2011. Let's hear a song from Maya Memsaab.
Ek haseen nigaah ka dil pe saaya hai एक हसीन निगाह का दिल पे साया है जादू है जुनून है कैसी माया है ये माया है एक हसीन निगाह का दिल पे साया है जादू है जुनून।
और भारतीय पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुधा मल्होत्रा का आज जन्मदिन है। उन्होंने बहुत कम समय में ही शोहरत हासिल कर ली थी, और उनके गाए हुए गाने आज भी दर्शकों की पसंदीदा गानों में शामिल हैं। उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में 1950 और 1960 के दशक में लोकप्रिय गाने गाए थे, तो उनका एक गाना सुनते
हैं। मिला गए
और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।